ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और नेपाल दौरे पर रहे चीनी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के अध्यक्ष ली नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडलों के बीच हुई भेंटवार्ता नेपाल के आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में पिछले लंबे समय से चीन द्वारा किए जा रहे सहयोग के प्रति प्रधानमंत्री ने व्यक्त की खुशी। विश्व बैंक से करीब 35 अरब रुपए ऋण स्वीकार करने का मंत्री परिषद बैठक ने किया निर्णय। बीते श्रावण से अब तक नेपाल में पाए गए 9,835 लोगों में डेंगू का संक्रमण और अजरबैजान और आर्मेनिया के सीमा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में कम से कम 39 आर्मेनियाई सैनिकों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ने कहा कि नेपाल और चीन के बीच का संबंध बहुआयामिक है। जनवादी गणतंत्र चीन के राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्थायी समिति के अध्यक्ष ली चांसू नेतृत्व में आई चीनियाई प्रतिनिधि मंडलों ने आज सिंह दरबार में शिष्टाचार भेंट करते हुए प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि नेपाल की परराष्ट्र नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल एक चीन नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री देउवा ने नेपाली भूमि पर चीन के खिलाफ किसी भी प्रकार की गतिविधि न करने देने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री देउवा ने नेपाल के आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में पिछले लंबे समय से चीन सरकार द्वारा किए जा रहे सहयोग की प्रशंसा की। साथ ही प्रधानमंत्री देउवा ने कुछ दिनों पहले चीन के सिचुआन प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। सिंह दरबार में हुई मुलाकात के दौरान जनवादी गणतंत्र चीन के राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्थायी समिति के अध्यक्ष ली चांशू ने कहा कि दोनों देशों के बीच असल पड़ोसी का मैत्रीपूर्ण संबंध वर्षों से कायम है। उन्होंने कहा कि नेपाल की सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखंडता और राष्ट्रीय एकता के सवाल में चीन गंभीर होने के साथ ही सचेत भी है। इसी तरह आज ही राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हा और जनवादी गणतंत्र चीन के राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्थायी समिति के अध्यक्ष ली चांसू के बीच भेंटवार्ता हुई। मुलाकात के दौरान उनके बीच आपसी हित के विविध विषयों में विचार विमर्श हुआ। संघीय संसद सचिवालय के मुताबिक संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में आज उनके बीच संसदीय प्रतिनिधि मंडल स्तरीय द्विपक्षीय भेंटवार्ता हुई। अध्यक्ष ली ने आज ही परराष्ट्र मंत्री डॉ नारायण खड़का, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संघीय संसद के दोनों सदनों से पारित 4 विधेयकों का प्रमाणीकरण किया। राष्ट्रपति भंडारी ने तथ्यांक संबंधी कानून का संशोधन और एकीकरण करने के लिए बने विधेयक स्टैंडर्ड नाप और तौल आयन 2025 का संशोधन करने के लिए बने विधेयक, प्रत्यायन संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक, सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों की शपथ संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक और योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक का प्रमाणीकरण किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सागर आचार्य द्वारा आज जारी किए गए बयान में उल्लेखित है। सरकार ने विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 35 अरब रुपए ऋण स्वीकार करने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद बैठक की भाद्र 27 गते हुई निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि एशियाई विकास बैंक से प्राप्त होने वाले 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण स्वीकार करने के लिए वार्ता टोली का गठन करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि ऋण सहायता से प्राप्त होने वाली रकम यातायात और व्यापार आबद्धता कार्यक्रम में खर्च किए जाएंगे। मंत्री कार्की ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2079 को स्वीकृत करने का निर्णय किया है। साथ ही नेपाल और रोमानिया के बीच द्विपक्षीय परामर्श संयंत्र की स्थापना करने के लिए समझदारी पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए परराष्ट्र मंत्रालय को स्वीकृति देने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक में बेरोजू फच्छोट अनुगमन समिति के सचिवालय में राजपत्र अंकित स्तर की दरबंदी को स्वीकृत करने, संघीय मामला मंत्रालय अंतर्गत अस्थायी दरबंदी को स्वीकृत करने, पोस्ट बहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालय को सरकारी जमीन लीज पर मुहैया कराने की स्वीकृति देने और मध्येश प्रदेश में चिड़ियाखाना स्थापना करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने अर्थमंत्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री और कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों के सिलसिले में होने वाले वैदेशिक भ्रमण को स्वीकृत करने का निर्णय किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा की महाभियोग सिफारिश समिति ने निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जवरा से बयान लेने का दौर खत्म हुआ है। समिति की आज संसद सचिवालय सिंह दरबार में हुई बैठक में निलंबित प्रधान न्यायाधीश जवरा ने समिति द्वारा तैयार किए गए 43 में से आज बाकी 8 सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद बयान देने का दौर खत्म हुआ। संसदीय सुनवाई समिति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की सुनवाई प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। बता दें कि न्याय परिषद ने इसी भाद्र 21 गति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए विभिन्न जिलों के उच्च अदालत के न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम मनोनीत कर संसदीय सुनवाई के लिए समिति के समक्ष पेश किया था। आगामी मार्गशीर्ष 4 गति को होने जा रहे प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों की छपाई शुरू की है। ये जानकारी आयोग के सह प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल ने दी। श्रावण महीने से अब तक नेपाल में 9,835 लोगों में डेंगू का संक्रमण पाया गया है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 75 जिलों में डेंगू का संक्रमण फैल चुका है, इसलिए डेंगू संक्रमण नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा ने 139 स्थानीय तय, 60 जिले और 7 प्रदेशों में खोज और नष्ट अभियान संचालन करने के लिए आवश्यक बजट का विनियोजन भी किया है। बता दें कि सरकार ने भाद्र 9 गति से ललितपुर स्वास्थ्य कार्यालय और महानगर पालिका के वार्डों से सहकार्य कर सामूहिक डेंगू अनुसंधान तथा लार्वा नष्ट कार्य शुरू करेगी। नेपाल सरकार ने आपदा से जूझ रहे पाकिस्तान को राहत स्वरूप 22 टन से अधिक अत्यावश्यक मानवीय सहायता सामग्री मुहैया कराई है। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता सेवा लम्साल ने दी। परराष्ट्र मंत्री डॉ नारायण खड़का की पहल में पाकिस्तान को राहत मुहैया कराई गई है। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान में आई बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावितों के लिए पाकिस्तान सरकार को नेपाल की ओर से राहत मुहैया कराई गई है। काठमांडू विश्वविद्यालय ने स्नातक तह की 4 सालों के कोर्स में योग संबंधी पठन पाठन की शुरुआत की है। स्कूल ऑफ आर्ट्स और स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ने संयुक्त रूप में योगिक साइंस और वेल बीइंग विषय का पठन पाठन शुरू किया है। आज देश भर में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 126 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। आज 4,29,807 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अजरबैजान की सेना ने बड़े पैमाने पर आर्मेनिया के क्षेत्र में गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 49 आर्मेनियाई सैनिक मारे गए। दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर शत्रुता की आशंकाओं को हवा दी। अधिकारियों ने आज ये जानकारी दी है। गोलीबारी के बाद आर्मेनियाई और रूस दोनों ही सीमा पर हालात को स्थिर करने के लिए सहमत हो गए हैं और आर्मेनियाई ने आरोप लगाया है कि टर्की के घातक ड्रोन से लैस अजरबैजान के सैनिक उनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भारत बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार दो साइको अपराधियों ने आतंक मचा दिया है। दोनों बाइक सवार अपराधियों ने 11 लोगों को गोली मार दी और लगातार फायरिंग करते हुए आगे बढ़ गए। इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। दोनों साइको शूटर्स का वीडियो सामने आया है। हालांकि बेगूसराय के एसपी ने 10 लोगों को गोली मारने की बात कही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और नेपाल दौरे पर रहे चीनी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के अध्यक्ष ली नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडलों के बीच हुई भेंटवार्ता नेपाल के आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में पिछले लंबे समय से चीन द्वारा किए जा रहे सहयोग के प्रति प्रधानमंत्री ने व्यक्त की खुशी। विश्व बैंक से करीब 35 अरब रूपये ऋण स्वीकार करने का मंत्रिपरिषद बैठक ने किया निर्णय। बीते श्रावण से अब तक नेपाल में पाए गए 9,835 लोगों में डेंगू का संक्रमण और अजरबैजान और आर्मेनिया के सीमा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ कम से कम 49 आर्मेनियाई सैनिकों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।